आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। आप देख रहे हैं पिछले 3 एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रेस, तनाव और उससे संबंधित विभिन्न विभिन्न पहलुओं की। आपने जाना कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके कारण क्या हैं, और फिर आपने अपने पिछले एपिसोड में स्ट्रेस के निवारण के बारे में चर्चा की, जिसके बारे में डॉक्टर गिरीश पटेल ने बहुत ही अच्छे 4 सीज के बारे में हमें बताया कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, सिचुएशन को कंट्रोल करना है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परिस्थिति उसके बारे में हम कम्युनिकेट करना है और हर एक के साथ कोऑपरेट करना है। तो अपनी यही चर्चा हम डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपका फिर से एक बार स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि डॉक्टर गिरीश पटेल हमारे जो दर्शक पहली बार हमारे साथ स्विच ऑन किया है टीवी, उनके लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर गिरीश पटेल एक बहुत ही फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं, एक मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, जो पिछले 30 साल से ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करके लोगों को एजुकेट करते गए हैं, और उनका स्पेशल इंटरेस्ट है मेडिटेशन के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें पिछली बार तो 4 सीज के बारे में बताया, और क्या आप जो बता रहे थे एक स्टेप्ड अप्रोच होनी चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो पहले आपने 4 स्टेप्स बताया और मैं समझता हूँ लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा भी होगा, कोशिश भी की होगी, और आप क्या इसके बारे में हमें बता
और चाहिए? कुछ एक जो बेसिक स्टेप्स है जी। एक तो है कि वर्तमान में हम जिए,
आज 5वां आप कहते हैं कि लिविंग इन
प्रेजेंट मोमेंट। 6th इज चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन
जी,
नहीं? क्योंकि जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण,
किस तरह हम परिस्थिति को देखते हैं।
और 7वां है रिलैक्सेशन और मेडिटेशन,
कि जो भी आपका एंटीडोट
के रूप में, हाँ, जो एक एंटीडोट के रूप में वह काम करता है।
तो डॉक्टर साहब, पहले के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे
कि वर्तमान में जीना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे एटलीस्ट 30-40% जो तनाव है वो भूतकाल के हैं
जी,
क्योंकि भूतकाल में कोई घटना हुई उसको अभी भी आप रिपीट कर रहे हो और टेंशन में जी रहे हो,
सोचते रहते हैं।
हाँ, या तो भूतकाल में आपने कोई गलती की उसके बारे में सोच करके आपको पाप की भावना होती है
जी,
कि मैंने बड़ी गलती कर दी, नहीं तो आज मुझे सहन नहीं करना पड़ता था। और कुछ हमारे प्रॉब्लम वो फ्यूचर के हैं
जी,
हम सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, उसका हमें डर लगता है।
तो इसको आपने अपने एक एपिसोड में
एंटीसिपेटरी कहा था। तो ये जो दोनों प्रकार के हमारे तनाव है उससे अगर मुक्ति प्राप्त करनी हो तो बहुत अच्छी चीज है वर्तमान में जिए। पहले थोड़ा सा तो हमने देखे, हमने पहले डिस्कस भी ये किया है कि भूतकाल जो है वह हिस्ट्री है, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। जो भी वर्तमान आपका है वो भगवान की एक छोटी सी भी सौगात समझो। दूसरी एक बहुत अच्छी इंग्लिश में है लेकिन अधिकतर दर्शक इसको समझ जाएंगे
जी,
कि पास्ट इज एन एक्सपीरियंस
जी,
प्रेजेंट इज एन एक्सपेरिमेंट एंड फ्यूचर इज
एक्सपेक्टेशन।
तो अभी वास्तव में क्या करना चाहिए, यूज योर एक्सपीरियंस इन एक्सपेरिमेंट जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं
जी,
ताकि जो फ्यूचर के हमारे एक्सपेक्टेशन है वह सही बन जाए
जी। बिल्कुल,
तो सचमुच अगर वर्तमान में हमें फोकस करना है,
वर्तमान
और सचमुच देखो तो वर्तमान ही सत्य है, भूतकाल भी सत्य नहीं है, फ्यूचर भी वास्तव में नहीं है, प्रेजेंट इज ओनली ट्रुथ।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और देखी जाए, आप जैसे बोल ही रहे हैं, इसको हम अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो भविष्य भी हमारा वर्तमान पे ही डिपेंड करता है।
टोटल
तो अगर हम वर्तमान पे जीते हैं तो नेचुरली अगर हम परफेक्शन से अपना काम करते हैं तो भविष्य खराब हो इसका कोई रीजन बनता नहीं। हमारा नेचुरली भविष्य जो है
सुधरना ही होना है।
और अगर हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं तो ना भविष्य में जी पाते हैं ना प्रेजेंट में जी पाते हैं,
स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा,
स्ट्रेस लेवल बिल्कुल बढ़ जाता है जैसे आपने बताया।
और एक बहुत अच्छी बात हिंदी में कही गई है कि भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना है, पर वर्तमान अपना है। ये कहते भी है लोग लेकिन हम प्रैक्टिस में नहीं करते।
अक्सर आपके इन स्लोगन्स और शेर और शायरी से मैं समझता हूँ दर्शक बहुत ही इंप्रेस होंगे और इन चीजों को याद भी रखेंगे।
बिल्कुल,
क्योंकि एक ये प्रेजेंट एक टिप्स हैं जो मनुष्य अपने साथ एक स्लोगन की तरह रखे तो कभी भी किसी परिस्थिति में आए तो उसको यूज कर सकते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हमें आज को ही देखना है, आज को ही सुधारना है और आज के लिए ही काम करना है।
यहाँ तक कि इस क्षण को ही सुधार,
एक क्षण को ही,
आज में भी कोई कहे कि इवनिंग में मुझे
इवनिंग में, बिल्कुल सही कहा, इसी वक्त
जो है उसको हमें अच्छा करना।
तो आपने देखा कि इसी वक्त से ही अपने थॉट्स को चेंज करके अपने लिए आज ही जीना है, परिवर्तन लाना है।
और कुछ भी इसमें बातें मदद करती है, एक नहीं प्रैक्टिकल स्टेप है कि जब भी आप भूतकाल में या भविष्य में जाते हो तुरंत को स्टॉप, मैं अभी जो इंजॉय कर रहा हूं, जो बात है मेरे सामने उसी में फोकस करने दो
जी।
या तो कोई आगे पीछे का विचार आए तब को ओके, चलो ये तो बात होनी है, लेकिन वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं इसी में मुझे ध्यान देने दो
जी।
और इंग्लिश में कहते हैं हियर एंड नाउ। मैं दर्शकों को कहूंगा कि एक बार कल एक दिन में पूरा दिन प्रैक्टिस करें, जिन्हें दिन में 200 बार अपने आप को कहे, गिनती करके बार बार अपने आप को कहे कि मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, बार बार ये कहे वेयर आई एम व्हाट आई एम डूइंग, और उसी का मुझे पूरा आनंद लेना है। जैसे अभी आप ये प्रोग्राम को देख रहे हैं
जी,
तो उसी का पूरा आनंद लीजिए,
आनंद लीजिए पूरा।
इसके बाद अगर आप भोजन खा रहे हैं तो फिर भोजन का पूरा आनंद लीजिए।
अच्छा, इसका एडवांटेज एक और जो मेरे जहन में आया वो ये है कि अगर हम ये कहते हैं हेयर एंड नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, तो कोई अगर गलत काम भी चल रहा होगा कोई मनुष्य, तो वो एकदम उससे कॉन्शियस भी हो
जाएगा,
उसको रोक के एकदम क्या मैं कर रहा हूँ, मुझे देख रहा है भगवान, और एकदम परिवर्तन
आ जाएगा।
लिविंग इन प्रेजेंट इज अ वंडरफुल गिफ्ट,
थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद
करता है।
दूसरी बात है जो सबसे पावरफुल है, साहित्य है जो सारी, जो हम सात टिप्स डिस्कस कर रहे हैं
मोस्ट इम्पोर्टेंट,
उसमें परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कि दृष्टिकोण को परिवर्तन कर लो।
दृष्टिकोण,
दृष्टिकोण बहुत ही पावरफुल चीज है। कहते हैं कि कलकत्ता में एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, उनके बच्चों ने कभी गरीबी तो देखी नहीं थी, उन्होंने सोचा कि अरे बच्चों को गरीबी का भी तो एहसास होना चाहिए क्या होती है। तो उड़ीसा में उनका एक दूर का रिश्तेदार एक छोटे से गांव में रहता था, तो वहां पर बच्चों को एक सप्ताह के लिए भेज दिया। और जब बच्चे वापस आए तो पूछा कि देखो बेटे, अभी पता चला कि गरीबी भी कोई चीज होती है। तो उनका जो सबसे छोटा बेटा था उसने कहा, डैडी पहली बार मुझे पता चला कि हम लोग कितने गरीब है और वो अंकल कितने पैसे वाले। बोले हैं क्या हुआ? तो कहा, डैडी देखो हमारे घर में तो आर्टिफिशियल लाइट है, परंतु उनके घर में तो नेचुरल लाइट है,
लाइट आती है।
हाँ, चंद्रमा के नीचे, चांद सितारों के नीचे आराम से सो जाते थे। कहा कि डैडी हमारा स्विमिंग पूल वो तो 100 फीट ही लंबा है, उनका स्विमिंग पूल तो 5 किलोमीटर लंबा है, नदी में स्नान करने के लिए जाते थे
जी बिल्कुल।
कहा डैडी हमारे घर में तो 2 ही कुत्ते हैं, उनके घर में तो 25 कुत्ते हैं, गली के सारे कुत्ते उनके होते थे और मोहल्ले में कुत्तों के साथ खेलते थे, तो हम कितने गरीब है वो अंकल कितने पैसे वाले।
दृष्टिकोण,
दिस इज एटीट्यूड। और आज तो बड़े बड़े जो मैनेजमेंट गुरुज है वो भी इसके बारे में बताने लगे हैं कि इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योर एटीट्यूड। परंतु ये बात हमारे शास्त्रों में ही है
जी।
कहते योग वशिष्ठ में ही ये बात है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने दृष्टिकोण को
बदल लीजिए।
और प्रैक्टिकली देखे तो जब भी समस्या ये दो देखो कि क्या और कोई एंगल से मैं सोच सकता हूं उस व्यक्ति के बारे में भी, कि शायद नहीं आज वो मेरे जीवन में कोई रुकावट डाल रहा है
जी, हाँ,
मेरी टीका कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि भूतकाल में उसने मेरी प्रशंसा भी की थी।
ये
तो उस दृष्टिकोण को भी देखिए, या तो आज भले उसमें कोई भी कमी दिखाई दे रही है लेकिन उस व्यक्ति में कोई अच्छाई भी है। तो ऐसे अगर आप कोशिश करेंगे कि मुझे एंगल को चेंज करना है तो बस आपकी एटीट्यूड है वह सही हो जाए।
अच्छा, तभी डॉक्टर साहब जैसे किसी ने कहा भी है किसी दार्शनिक की एटीट्यूड डिसाइड्स योर
ऑल्टीट्यूड।
मेरे ख्याल से आपने इसको एग्जांपल देके बहुत ही स्पष्ट किया, इसको बहुत अच्छे रूप से दर्शकों के सामने रखा। तीसरा स्टेप आपने मेडिटेशन और रिलैक्सेशन बताया था, पहले दो तो आपने बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई किए।
रिलैक्सेशन और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस कैनॉट एग्जिस्ट टूगेदर, दोनों साथ में नहीं हो सकते
बिल्कुल।
या तो आप तनाव में हैं या आप रिलैक्स हैं। इसलिए बड़ा प्रैक्टिकल और सिंपल ये स्टेप है कि कोई रिलैक्सेशन की अच्छी विधि को सीख लो
जी।
और आप एक बार रिलैक्स करना सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिक तनाव का वो एक एंटीडोट हो जाएगा। जैसे कि आपको एसिडिटी है तो आप एंटासिड्स की गोलियां लेते हैं, ऐसे ही वह एक उसकी दवाई बन जाएगी।
डॉक्टर साहब, इससे पहले आप इन दोनों को इलैबोरेट करें के बारे में बताएं, मैं जानना चाहूंगा कि रिलैक्सेशन और मेडिटेशन क्या ये अलग अलग शब्द हैं?
ये बिल्कुल अलग है।
अलग है मतलब, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है।
नहीं, अलग ऐसे है कि मेडिटेशन इज ऑल्सो रिलैक्सेशन, बट मेडिटेशन इज रिलैक्सेशन प्लस समथिंग मोर।
मेडिटेशन इज रिलैक्सेशन प्लस एक्सपीरियंस,
और नो टू वी अचीव मोर देन रिलैक्सेशन। जैसे मेडिटेशन में वो एटीट्यूड भी चेंज हो जाती है,
पूरा चेंज, ग्लोबल चेंज है।
मेडिटेशन में आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी करते हैं, सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, एक जो हमारी इनर क्वालिटीज है वह भी बढ़ती है। तो इसके कारण मेडिटेशन इज रिलैक्सेशन प्लस मेनी मोर थिंग्स। तो रिलैक्सेशन की तो सिंपल विधि, कहीं समझते भी मेडिटेशन मुश्किल है
जी,
परंतु कम से कम अगर रिलैक्स करना भी सीख लो, जैसे कि एक है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बाय सेल्फ सजेशन, कि जिसमें पैरों की उंगलियों से सर तक एक एक बॉडीली ऑर्डर्स को आप ऑर्डर देते देते बॉडीली पार्ट्स को रिलैक्स करते हो।
जैसे आप कैसे आप बताएंगे दर्शकों को?
अच्छा, आधे मिनट के अंदर सिंपल तो ये है कि भी आपने कंफर्टेबली और भी रिलैक्सिंग चेयर में बैठे तो अच्छा है, कि जहां पर आप अपनी बैक को भी रिलैक्स कर सको ना, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए, हाथों को भी ऐसे मोड़ ले तो सबसे अच्छा होता है, और फिर एक बार आराम से पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक एक एक बॉडीली पार्ट्स को फील करे कि मेरी पैर की उंगलियां है नहीं, पैर की उंगलियों में क्या फील हो रहा है, और फिर तीन बार उसे ऐसे सजेशन दे रिलैक्स स्लोली, उसको फील भी करना है, सिर्फ नहीं रिलैक्स रिलैक्स, परंतु स्लोली कहे उसको फील भी करे, ढीला छोड़ दे सकू, जैसे रुई को खींचेंगे तो वह थोड़ी ढीली होगी, ऐसे वह मसल्स भी रिलैक्स हो रहे हैं, फिर पैरों के पंजों पर कंसंट्रेट करे, बस सिर्फ उसको फील करे, कंसंट्रेट भी नहीं करना है, उस पार्ट के बारे में अवेयर हो जाए, जागृत हो जाए, और फिर उसको रिलैक्स होने का ऑर्डर दे, फिर घुटनों से नीचे दोनों पैरों को, देन थाइज, फिर पेट पर आ सकते हैं, छाती, बैक, ऐसे हाथ की उंगलियां, फिर फोर आर्म, आर्म, फिर गला, चेहरा और दिमाग, और सभी पार्ट्स को हम तीन तीन बार भी रिलैक्स होने का ऑर्डर देके कंप्लीटली रिलैक्स करें तो भी अच्छा अनुभव हो सकता है।
डॉक्टर, ये जो आपने जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताई, जो दर्शक हैं अपने काम में जाते होंगे तो वहां पे आप कितने टाइम उन्हें एडवाइस करेंगे? क्या हर एक घंटे में, आधे घंटे में, एक बार ही, दो घंटे, या दिन में एक दो बार ही करना?
दिन में तीन बार बेस्ट है, एक तो सवेरे सवेरे करें, अर्ली मॉर्निंग में, जैसे आप तैयार होते हैं ना, कि जब तक आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने आप रेडी नहीं हुए,
नहीं हो सकते,
ऐसे जब तक आप रिलैक्स नहीं हुए, मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए, यू आर नॉट रेडी फॉर योर जॉब।
तो ये मोमेंटरी रिलैक्सेशन हो गया, मतलब उस समय अगर व्यक्ति रिलैक्स होना चाहे, अपने आप को हल्का रखना चाहे, कर ले
तो कुछ समय मेंटेन होगा, अच्छा ब्रेक में भी करे,
ब्रेक में भी ये सब,
रात को सोने से पहले भी जरूर
एक बार ये जरूर करें। अच्छा, फिर मेडिटेशन की जो बात आती है, आप
और एक छोटी सी टेक्निक आपको बताता हूँ, जिसको कहा है जैकॉबसन्स मेथड ऑफ रिलैक्सेशन। जैकॉबसन्स मेथड क्या है कि कहीं सोचते कि सिर्फ ऑर्डर्स देने से हम रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, तो एडमंड जैकॉबसन ने सोचा कि क्यों ना हम पहले मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, जैसे एक स्प्रिंग को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फिर अगर ढीला छोड़ दो तो थोड़ी रिलैक्स होगी, तो इसे उन्होंने ऐसे 38 स्टेप्स डेवलप किए कि एक एक पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर रिलैक्स करना है, तो 38 शायद बहुत ज्यादा है, उसको हम कम भी कर सकते हैं। मैंने एक टेक्निक डेवलप की जिसमें 16 स्टेप्स है, 16 स्टेप्स के द्वारा आप सारी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं।
तो ये एक फिजिकल रिलैक्सेशन, जिसका थोड़ा सा आपको मेंटल प्रभाव जरूर पड़ता होगा। डॉक्टर, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि 30 साल से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और आपने मेडिटेशन का प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है, तो अक्सर मेडिटेशन के बारे में ये समझा जाता है कि एक डिफिकल्ट है या अनअचीवेबल मेथड है या एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और आप अपनी प्रैक्टिस में बिजी होते हैं और ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल भी करते हैं, और आपने कितने ही अच्छे लोगों को ये सिखाई भी होगी, तो क्या आप इसके बारे में कमेंट करना चाहेंगे? इज इट इजी प्रोसेस?
नो, इट्स डेफिनेटली इजी।
मतलब हाउ इजी इज इट? क्योंकि आपको, हमारे दर्शक जानने को इच्छुक भी होंगे कि क्या मेडिटेशन एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक गरीब, एक अमीर, एक बिजी, एक लाइट आदमी के लिए उतना ही फिजिबल है?
नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले तो गलत मान्यता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। कई बार तो मैंने देखा कि रिलैक्सेशन से मेडिटेशन इजी है, और एक मेरा अपना अनुभव है कि 30 सालों से मैं ये प्रैक्टिस करता हूं, मैंने खुद देखा है कि अर्ली मॉर्निंग जब मुझे कुछ ऐसे प्रैक्टिस करनी है अपने आप को तैयार करने के लिए, तो कई बार मैं जैकॉबसन्स मेथड से भी स्टार्ट करता हूं, लेकिन फिर अंत में देखता हूं तो मैं तो अच्छा मेडिटेशन कर रहा हूं ना, मेडिटेशन सहज हो जाता है। दूसरी एक बात कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमने देखा है कि 8 लाख से ज्यादा भाई बहन है, कि जो नियमित सरल रूप से, इसमें बच्चे भी है, बूढ़े हैं, अनपढ़ लोग भी है, कि जो सहज ही मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं।
ठीक है, फ्री सिखाई जाती है?
बिल्कुल फ्री सिखाते हैं, और वो टेक्निक भी समझाई जाती है
जी।
वास्तव में सभी जगह पर आप देखो तो भारत में कम से कम 6000 से भी ज्यादा सेंटर्स है
भारत में।
हाँ, और विदेशों में करीब 100 देशों में इसके सेंटर्स है, कि जहां पर ये फ्री में इसलिए सिखाते हैं, कई लोग हमको कहते हैं, अभी हमने हैदराबाद में कैंप किया था मेडिटेशन का, तो कईयों ने कहा नहीं नहीं इसकी फीस लो, फ्री नहीं करो। जो दादी प्रकाश मंडी जी ब्रह्मा कुमारी के चीफ है, वो हमेशा कहते हैं कि भी ज्ञान जो है वो विस्डम है, और विजडम के लिए पैसे नहीं लेने नहीं चाहिए, नहीं ना, उस विजडम को फ्री बांटना चाहिए। इसी
तो इस टेक्निक में डॉक्टर साहब आप एक सरल मेथड आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे मरीज जो देख रहे होंगे जिनको स्ट्रेस है, तो किस तरह इसको
सिंपल, सिर्फ तीन शब्द समझ लो
जी।
तीन शब्द का भी हम अभ्यास करने लगे तो सहज ही मेडिटेशन कर सकेंगे। और वो तीन शब्द है वॉच, दूसरा है मैच और तीसरा है कैच। वॉच अर्थात कि देखना, साक्षी भाव से देखिए आपकी जो भी फीलिंग्स हो रही है, अंदर में जो भावनाएं पैदा हो रही है, बस उसको देखिए। और जैसे ही हम देखने लगते हैं तो तभी कोई विचार नहीं आता है। कभी आपने देखा होगा कि बिल्ली कैसे चूहे को पकड़ती है,
देखती है,
देखते हाँ क्या करती है, जहां से भी पॉसिबिलिटी यहां से चूहा आने वाला है चुपचाप बैठी रहती है, जैसे चूहा निकलेगा पकड़ ले।
जी बिल्कुल।
तो ऐसे ही एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, फर्स्ट इज वॉच
जी,
कि सचमुच एक तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने विचारों को ही वॉच करो, फीलिंग्स को वॉच करो, बिल्ली कैसे चूहे को पकड़ती है बात कर रहे थे, तो ऐसे ही आप, ये एक अच्छी सी प्रैक्टिस है, कभी व्यक्ति बैठ करके करे कि मुझे जो दूसरा विचार आ रहा है उसको पकड़ना है, दूसरा विचार कहां से आ रहा है, दूसरे विचार को पकड़ना है। ऐसा अगर आप एक मिनट भी सोचते रहो उसी को पकड़ने के लिए अवेयर हो जाओ तो दूसरा विचार आएगा ही नहीं
जी।
तो ऐसे हम
इसी विचार में रहेंगे कि मुझे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है,
सेकंड थॉट को मुझे पकड़ना है, थॉट को ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल ठीक। और एक काम ये भी कह सकते हैं कि जो भी फीलिंग्स हो रही है बॉडीली ऑर्गन्स में उसको भी भले आप सिर्फ ऑब्जर्व करो
जी,
तो विचारों की गति कम हो जाएगी
जी।
मेडिटेशन क्या है, मन को मारना नहीं है, मन को मोड़ना है
जी।
तो मोड़ने के लिए जब विचारों की गति थोड़ी कम हो जाए तो फिर हमें उसे सहज मोड़ सकते हैं, जैसे कार को मोड़ना है तो हम ब्रेक लगाते हैं।
ये आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर कहा गया कि मेडिटेशन इज स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ थॉट्स, तो इट्स नॉट स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ थॉट्स बट एनकरेजिंग बट मॉडिफाइंग देम, आपने बताया उसको,
और टू टर्निंग योर
टर्निंग टुवर्ड्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उनको।
या तो उसको एक और अच्छी बात मैं बताता हूं हमेशा, कि विचारों के द्वारा विचारों के परे जाना, जैसे कहते कि बिन हीरे से हीरे को काटा जाता है, तो ऐसे ही आप विचारों के द्वारा विचारों से परे जा सकते हैं। तो शुरू में विचार है लेकिन उसकी दिशा को हमें
मोड़ दिया उसको।
कि योग से पहले आपके विचार है आपके शरीर के बारे में, व्यवसाय के बारे में, परिवार के बारे में चल रहे हैं,
तो हमने जब वॉच किया हमने देखा तो फिर मैच हम कैसे करते हैं।
मैच अभी इसके साथ करना है कि भी हमारे ओरिजिनल जो थॉट्स है, हमारा ओरिजिनल नेचर है, उसके साथ मैच करना है। देखेंगे कि भी हमारी चेतना का ओरिजिनल नेचर देखो तो वो पीसफुल है,
जैसे पानी की आप बात कर रहे हैं, ये क्या शारीरिक चेतना या आत्मा की,
नहीं वास्तव में आत्मिक स्पिरिचुअल चेतना है,
तो उसकी कुछ बेसिक क्वालिटीज जिनके आप मैच
करना चाहते हैं। जैसे पानी का ओरिजिनल नेचर कैसा है, पानी ठंडा है,
ठंडा है,
पानी जब अग्नि के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है, फिर से अग्नि से दूर कर दो चार पांच घंटे के बाद फिर से ठंडा हो जाएगा
और फ्लो भी करता है।
हाँ जी हाँ, ऐसे ही आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है वह है शांति, प्रेम, पवित्रता, परंतु आत्मा जब शरीर के संपर्क में आती है और विशेष हम शरीर के साथ अपने विचारों को मैच करते हैं तो अशांत हो जाती है, डिस्टर्ब होती है। परंतु मेडिटेशन में क्या है कि उसे शरीर से अलग करके बस आप एक मिनट भी वो अनुभव करो, तुरंत शांति का अभ्यास होने लगेगा, तुरंत वह जो ओरिजिनलिटी है उसको आप कैच करेंगे।
तो इसमें ये कहा जाए डॉक्टर साहब कि जैसे आप SOS कहा भी जाता है, स्टैंड बैक एंड ऑब्जर्व, तो आप पहले अपने थॉट्स को देखें,
देखो हाँ,
एक एक थॉट को, और फिर उसको अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से मैच करें
करो,
कि वेदर इट इज लाइक दैट और नॉट, नहीं है तो उसको हटा दें और मैच है तो उसको आगे पॉजिटिव ही ले जाएं, क्योंकि ओरिजिनल से मैच करेंगे तो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा
ऑटोमेटिक, और सारे वो पॉजिटिव होते ही जाएंगे। और जैसे आप अच्छे से मैच करेंगे उसको कैच भी करेंगे, उसे एक्सपीरियंस
करेंगे,
छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए वास्तव में,
जैसे आप बताएं
कि हमें बीच बीच में इसके लिए एक मिनट का भी ब्रेक लो।
अच्छा, तो क्या हर घंटे साइलेंस की जरूरत है या ऑफिस से हटके, या कोई व्यक्ति कहीं पर भी इसे कर सकता है?
भले शुरू में शायद हो सकते कि थोड़ी सी आवश्यकता हो जब बिगिनर्स है, लेकिन एक बार आपको एक दो मास का अभ्यास हो जाए फिर कोई साइलेंस की जरूरत नहीं है। फिर तो मैं कहता हूँ रेलवे स्टेशन पे भी आप कर सकते हैं, बस स्टॉप पे भी कर सकते हैं,
इतनी इजी है ये,
क्योंकि अपने आप को डिटैच करना है,
डिटैच करना।
एक सिंपल शॉर्ट में बताता हूँ कि वो जो प्रोसेस है कि बस इतना भी करे, भले मेडिटेशन तो बहुत डीप है, कभी हम इसकी भी चर्चा कर सकते हैं, परंतु अगर दो एक मिनट में भी आपको एक्सपीरियंस करना हो तो थोड़ा कंफर्टेबली बैठिए, और सबसे पहले बस अपने वो विचारों को देखिए, जैसे कहा, थॉट्स को ऑब्जर्व करिए। जैसे ही आप बस 10 सेकंड भी ऑब्जर्व करेंगे, विचारों की गति शांत होने लगेगी। और जैसे शांत हो, फिर ये सोचिए कि मैं वो एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मस्तिष्क के मध्य में एक दिव्य ज्योति हूं, और ये शरीर जो है ये कंप्यूटर जैसा है
जी,
मैं उसकी प्रोग्रामर हूं, या तो शरीर एक मोटर कार जैसा है और मैं आत्मा उसकी ड्राइवर हूं। बस इस बात को, ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को रियलाइज करते हो, बस एक मिनट भी बैठिए और इसी में मन को लगाना है, इस विचार में उसका चित्र भी थोड़ा सा निर्माण करना है, तो बस एक मिनट में भी आपको शांति का अनुभव होने लगेगा।
डॉक्टर साहब, ये भी उसी तरह हुआ जैसे आपने बताया था, टेकिंग कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, क्योंकि रियल सेल्फ है, आइडेंटिटी है। अक्सर आदमी शरीर के बहाने ही अपने पूरा दिन काट देता है और अपने रियल सेल्फ से थोड़ा दूर हट जाता है, दूर जो रियल एक्चुअल क्वालिटीज है उनसे काफी दूर हट जाता है। तो अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल रख लेते हैं, अपने रियल सेल्फ के ऊपर हम उसका चार्ज ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन बिकम्स ए नेचुरल प्रोसेस।
या तो इससे ऑटोमेटिक कंट्रोल आ ही जाएगा,
कंट्रोल आएगा,
क्योंकि आप ये रियलाइज करेंगे कि मैं तो ड्राइवर हूँ, ये बॉडी तो कार है, या तो मैं घुड़सवार हूं, या तो घोड़ा है, सिर्फ शरीर तो घोड़े जैसा है, परंतु मैं उसको कंट्रोल करने वाली आत्मा हूं। वो अवेयरनेस सिर्फ आपकी एक मिनट भी आए, इमीडिएटली साइलेंस का अनुभव होने लगेगा। और ये छोटा सा अभ्यास सभी को करना चाहिए, अगर 4-5 दिन भी अभ्यास करे तो वो रियलाइज करेंगे कि कितना सहज है अपने आप को रिलैक्स करना।
आपने जितनी इजी इस टेक्निक को करके बताया, तो मैं समझता हूँ कि हम चाहें तो दिस मेडिटेशन कैन एक्चुअली बिकम अ वे ऑफ लाइफ ऑल्सो।
डेफिनेटली,
क्योंकि
हैज टू बी।
अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं इस टाइम पे डॉक्टर हूँ, इस टाइम पे इंजीनियर हूँ, इस टाइम पे ये हूँ और इस टाइम पे मैं पूजा करता हूँ, लेकिन देन मेडिटेशन कैन एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
वेरी ट्रू।
और जो भी हम कर्म करेंगे उसके अंदर इसकी झलक, रियल सेल्फ की झलक ऑटोमेटिकली दिखाई देनी चाहिए।
होगी, हाँ।
और आप तो इसको 30 साल से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं।
बिल्कुल।
अपने अपने जीवन में इसका क्या अनुभव किया, इसके क्या बेनिफिट्स आपको बिसाइड्स शांति मिली, वो मिली, एक अप्रोच में लाइफ की उसमें आपको कैसा लगा?
मतलब शुरुआत तो जब मैंने की तब मेडिकल में पढ़ाई कर रहा था,
जी हाँ,
तो भी लक्ष्य यही था कि मेमोरी बढ़े, और कोई इंटरेस्ट नहीं था।
शांति तो जीवन में थी, यही रखता है कि मेमोरी,
वास्तव में शांति तो थी, पढ़ रहे थे, लेकिन उससे सचमुच मेमोरी तो बढ़ी शुरू में, क्योंकि मन एकाग्र होने लगा, मन में उस एज में भी जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते वह दूर हुए। और फिर आगे चल के मैंने देखा, जो सबसे बड़ा फायदा मुझे अपने जीवन में हुआ, कि भी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई। कई लोग पूछते भी है कि भी आप इतना करते, बुक्स लिखते, ये करते, कैसे पॉसिबल है? तो मैं सोचता हूं कि मेडिटेशन से यह फायदा हुआ कि क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई, कि जब पेशेंट को देखना है तब पेशेंट को देख रहे, फिर फ्री हुए तो तुरंत डिटैच होकर के कुछ अच्छा चिंतन कर सकते कि भी बुक्स में कैसे लिखना है, कोई लेक्चर्स तैयार करने कैसे करने हैं। तो इस प्रकार से क्रिएटिविटी बहुत ही बढ़ी।
मतलब
जीवन में प्रॉब्लम्स तो आते ही है, मेरे जीवन में भी सीरियस प्रॉब्लम आए कई बार, लेकिन देखा वो प्रॉब्लम्स होते हुए भी हम एटीट्यूड को चेंज कर पाए।
देखा जाए कि क्रिएटिविटी एक मेन बेनिफिट अगर इसका हमें मिलता है, बाकी चीजें तो एक साइड बेनिफिट की तरह हमारे साथ ऑटोमेटिकली, मेमोरी बढ़ना, शार्प हो जाना, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच रखना, ये सारी चीजें बहुत इजीली आ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे ये स्ट्रेस का जो इतना अच्छा एपिसोड रहा आपके साथ, आज हम चौथा एपिसोड आपके साथ कर रहे हैं और आपने निवारण के हमें नए नए तरीके बताए, समय बहुत हो चुका है और हम चाहेंगे कि आप एक ऐसा छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को देकर जाएं जो अपने साथ वो कैरी होम मैसेज की तरह ले जा सकें और जीवन सच में उनका तनाव से बच जाए, बिल्कुल निवारण हो जाए।
बिल्कुल नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं ये समझता हूँ कि एक आंतरिक मान्यता को बना ले कि मुझे पीसफुल जीवन जीना ही है और इसके लिए मेरी जो एफर्ट है मैं जारी रखूं। विंस्टन चर्चिल को एक बार एक इम्पोर्टेंट लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, तो सबके बीच में उन्होंने कहा कि भई ये 4 शब्द सिर्फ मैं आपको एक लेक्चर में देना चाहता हूं, ये 4 शब्दों का ही मेरा भाषण है। और वह था, नेवर 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 गिव अप। तो यही बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी जो आपका पुरुषार्थ है, जो बातें आपने समझी है कि जो 7 पॉइंट्स स्ट्रेस के जीवन में अपनाने हैं, उस पॉइंट्स के बारे में जो टेक्निक्स आप समझे हैं उसका बस अभ्यास करने लगिए, और कम से कम 1 मास अभ्यास करिए। आप 1 मास तक उससे अगर गिव अप नहीं करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप काफी हद तक तनाव को कम कर पाएंगे।
डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे डॉक्टर गिरीश पटेल से, तो आपने देखा कि मनुष्य जीवन को महान और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए तनाव एक ऐसी चीज है जिससे हमें अपने जीवन से हटाना ही है, जिसका निवारण बहुत जरूरी है, और एक स्टेप्ड अप्रोच हमें डॉक्टर साहब ने बताई। और हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अगर आपको परिवर्तन अपने जीवन में लाना है, अगर हम इच्छुक हैं, जिसके हम जाते हैं, हम सभी इच्छुक जरूर होंगे, तो वो क्षण है अभी। हम कल या परसों तक इस परिवर्तन को नहीं टाल सकते, और हम समझते हैं कि जैसे ही हमारा ये एपिसोड होगा, आपके अंदर से एक संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल आएगी कि मुझे आज परिवर्तित होना ही है, मुझे आज तनाव रहित बनना ही है। अगले एपिसोड के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।